सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सयलोवसगणिवहा संवरणेनेव जस्स फिट्टन्ति पाशस्सतसणमिं पाषणयो अम्परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 13वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणा खंड, उसमें कर्म अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है। 6 प्रकार के कर्मों पर हम ये सारा घटित कर रहे हैं, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, इरियापत कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म। ये 6 कर्म उस पर जो सभी अनुयोग द्वार लगा रहे हैं ना, हमने कौन कौन से लगाए अभी तक, सत, फिर संख्या, द्रव्य को ही, द्रव्य प्रमाण को ही संख्या कहते हैं, फिर क्षेत्र, स्पर्शन, काल देखा, अभी अंतर देख रहे, फिर भाव और अल्पभूतव देखेंगे। आपकी शंका है, अभी हम आए हैं 139 पेज पर और आपकी शंका है 135 पृष्ठ पर, 135। हाँ, क्या शंका है आपकी, कहाँ, नीचे से तीसरी, यहाँ की पहली, अच्छा देखो देखो, आपका प्रश्न ऐसा है कि छठे सातवें नरक में तो जब हम क्रियाकर्म का अंतर का अर्थ क्या है, वो दो वापस उसी में लौट जाना चाहिए। सातवें नरक में कैसे घटित किया, तो वहां जाने के बाद 3 अंतर्मूर्ति के बाद सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो सम्यक्त्व का काल तो काल में गिनेंगे, तो 3 अंतर्मूर्त और 1/4 अंतर्मूर्त सम्यक दर्शन का, सम्यक्त्व में जब तक रहा तो अंतर्मूर्त, तो 4 अंतर्मूर्त तो पहले हुए, बाद में अंतर शुरू हुआ और फिर लास्ट में आयु का बंध किया और उसके बाद उसने उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया, फिर नीचे आकर अंतर्मूर्त के बाद मरा, तो 2 अंतर्मूर्त अंत में और पहले 4 अंतर्मूर्त, इस तरह घटित किया था। अब आपका प्रश्न है अन्य जो नरक है तो उसमें आपने 5 ही क्यों कहे, 6 क्यों नहीं कहे, उसका यही है कि वहाँ सम्यक्त्व के साथ मरने की जरूरत नहीं है। हाँ, यानी मरण की अपेक्षा सम्यक्त्व लेके आप दूसरे भव में चला जाएगा, यानी सम्यक्त्व में ही मरेगा वो। हाँ, वो सम्यक्त्व का अंतर्मूर्त भी घड़ा लेना है ना, सम्यक्त्व शुरू हुआ तब अंतर समाप्त हुआ, आप क्रिया कर्म का अंतर देख रहे। हाँ, अंतर तो कैसे घटित होगा, देखो देखो, यानी पहले क्रियाकर्म था, फिर छूट गया, फिर प्राप्त हुआ, प्राप्त कब हुआ, जब 1 अंतर्मूर्त बाकी रहा था, जब सम्यक तो शुरू हुआ तो अंतर समाप्त हुआ, तो ये लास्ट 1 अंतर्मूर्त और पहले 4 अंतर्मूर्त, ऐसे में बराबर है ना, ख्याल में आता है। सातवें नरक में तो उसको फिर मिथ्यात्व में लाकर बाद में 1 अंतर्मूर्त के बाद मरना था, इसलिए 2 अंतर्मूर्त वहां घटाए थे।
हाँ,
6 तक तो सम्यक्त्व तक मर, सम्यक्त्व के साथ, 6 नहीं, 5 की बात करें, 5 की बात करें, हाँ, यानी छठे नरक तक तो सम्यक्त्व के साथ मरेगा वो, मर सकता है, हमें तो उत्कृष्ट अंतर देखना है, इसलिए ऐसा जीव लिया कि जो सम्यक्त्व के साथ मरेगा, सम्यक्त क्रियाकर्म सम्यक दृष्टि को होगा, हाँ, इसलिए वो क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतर नरकों में बता रहे।
जो पांच मंत्र लिया तो जैसे पहले दूसरे जो भी नरक में है
हाँ।
तो पहले उसने क्या किया, वो मिथ्या दृष्टि से जन्म लिया,
मिथ्यात्व अवस्था में जन्म लिया, वो 28 प्रकृति की सत्ता वाला था, जाते उसने तीन अंतर्मूर्त के बाद सम्यक तो प्राप्त किया,
तीन अंतर्मूर्त
हाँ, तो वहाँ क्रियाकर्म शुरू हुआ, अंतर्मूर्त तक रहा और फिर वो छूट गया, मिथ्यात्व में गया, तो क्रियाकर्म का अंतर शुरू हुआ, जाके एकदम अंत में उसने फिर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ वो। हाँ, क्योंकि ये बड़ा काल है ना, तो उपशम ही करेगा, फिर वेदक नहीं करेगा, इसलिए फिर उसको वो अंतर्मूर्त रखा है और वो उपशम के काल में ही मरेंगे वो तो, या सासाधन में जाके मरेंगे, तो वो अंतर्मूर्त छोटा घटित होगा,
तो अंत का दो लेंगे,
अंत में एक,
एक।
छठे नरक तक,
एक
सातवें के लिए नीचे दो हाँ, और स्टार्टिंग में चार चार,
चार कैसे
पर्याप्ति पूरी करने के लिए एक अंतर्मूर्त, विश्राम एक अंतर्मूर्त, विशुद्धि के लिए एक अंतर्मूर्त, और फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया तो सम्यक्त्व में भी मिनिमम अंतर्मूर्त रहेगा उसकी बात। हाँ, आपका क्या प्रश्न? हाँ देखो, आपका प्रश्न है 28 प्रकृति वाला ही क्यों लिया, क्योंकि उसको वेदक सम्यक्त्व है, वो तो जल्दी प्राप्त करे, और एक बार प्राप्त किया है तो उसका सम्यक्त्व का काल हमको घटाना है, अंतर बड़ा दिखाना है ना, तो सम्यक्त्व का काल छोटा अंतर्मूर्त लेंगे हम, इसलिए उसको 28 की सत्ता वाला लिया, उपशम सम्यक्त्व का काल ज्यादा होगा,
अंतर काल कम होगा, जल्दी प्राप्त करके जल्दी छूट जाएंगे, इसके लिए अंतर बढ़ेगा।
139 पृष्ठ पर वो तो अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं उसको, नीचे से चौथी पांचवी लाइन ना पैराग्राफ की 139 पृष्ठ पर आए हम। देखो अभी हमारा क्या विषय चल रहा है उसको देखते हैं, हम अंतर की तो बात हो रही है हमारे, और मनुष्य गति में घटित कर रहे हैं, तो मनुष्य में हमने सामान्य मनुष्य देखे, फिर पर्याप्त और श्रीवेदी की बात चल रही थी हाँ। देखो यहाँ हम यहाँ से पढ़ेंगे चौथी लाइन से, इसी प्रकार मिला 139 पेज नहीं, ऊपर से चौथी लाइन, थोड़ा कल का भी रिपीट करें, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जानना चाहिए, मिला
हाँ।
अब यहाँ से पढ़ेंगे ना, इतनी विशेषता है कि अभी उसमें क्या डिफरेंस है उसको बताएंगे, इनमें क्रम से अधक कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 23 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य प्रमाण, क्योंकि मनुष्य पर्याप्त लिया ना, बीच में अपर्याप्त भाव नहीं होगे तो लगातार 24 ही हो सकते हैं, तो 24 में से अंतिम वो 3 पल्ले वाला लिया, इसलिए 23 कोटि और 3 पल्ले लिए, ये अधक कर्म है ने आहार वर्गणा जो है शरीर की हाँ, औदारिक शरीर की जो औदारिक नौकर्म वर्गणा, तो उस रूप एक समय तक रही, अन्य अवस्था को प्राप्त हुए, और दोबारा अंत में उसने ग्रहण किया उसको, तो अंतिम एक समय भी उसमें से घटाना। रुजुगति का हेला सवाल ही नहीं है, नहीं नहीं आपका देखो कारमान का सवाल नहीं है, एक बार उसने छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। देखो उसके परमाणु शरीर से छूट गए और फिर दोबारा जब ग्रहण करेगा तब उसका वो देखो देखो विग्रह गति में उसके पास अभी शुरू की बात कर रहे हैं आप, स्टार्टिंग वाली बीच में तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीच में उसने छोड़ ही दिए हैं, वो जाके जो मनुष्य की स्थिति जो अंतिम भव में अंतिम समय में वो लेगा, इसलिए बीच में विग्रह गति का सवाल ही नहीं होता है, स्टार्टिंग में विग्रह गति में तो उसके कुछ औदारिक शरीर के परमाणु ही नहीं है वहां पर हाँ, तो उसका अंतर कब शुरू करेंगे, जब पहले समय में उसने ग्रहण किए थे, दूसरे समय में निर्जरा हुई और तीसरे समय में वो उसका अंतर शुरू हो गया, और फिर अंत में जाकर तीन पल्ले के अंतिम समय में वह ग्रहण करेगा तो अंतर छूट गया उसका, अंतर समाप्त हुआ। ये तो मनुष्य पर्याप्तों की बात है, और पहले समय में लिया, हाँ हाँ उस समय तो वो है, हाँ दूसरे समय में है ही नहीं है, परंतु द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा मैं बता रही हूँ, उस समय ही वो निर्जरा यानी निकल गया ऐसा कहने में आता है।
देखो जैसा हमने देखा है कि किसी ने 100 वर्ष की आयु बांध ली है तो उसके परमाणु वर्गना जो है वो आखिरी
औदारिक
औदारिक लो कर्म वर्गना मुझे कहना,
हाँ
तो लो कर्म वर्गना जो है वो 100वें साल के अंत के समय में उसने ग्रहण किए तो उसी समय में
आउट होते हैं। हाँ
वैसे पहले समय में
भी होता है, परंतु वो कहने के दो पद्धति है। पहले समय में जो अनंत ग्रहण किए ना, तो पहले समय के लिए ही है वो, दूसरे समय में है ही नहीं, तो या तो कहे कि पहले समय में ही निकल गए तो कहो दूसरे समय में उसकी निर्जरा हो, क्योंकि दूसरे समय में ऐसा नहीं कि दूसरे समय में वो निकल जा रहे, पहले समय में है बस, दूसरे समय में है ही नहीं है, तो उसको ऐसा भी कहेंगे हम। जैसे हम बंध विच्छित्ति कहाँ कहते हैं, जहाँ पर बंध है वहीं पर बंध विच्छित्ति कहते हैं, वैसे यहाँ पर एक कथन ऐसा आता है कि जिस समय ग्रहण किए उसी समय में निकल गए, क्योंकि मरण के समय लेते हैं अनंत परमाणु और पूरे लाइफ टाइम के जितने भी बचे हुए परमाणु सब उसी समय चले भी जाते हैं, उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि विग्रह गति में जाकर उसने निर्जरा की। सौ साल की आयु के साथ आया है, नो कर्म
ग्रहण करेगा,
हाँ
तो उसमें से पहले समय में जो ग्रहण किए 100 ग्रहण किए,
हाँ
तो उसमें से कितने रहेंगे और कितने निर्जरित होंगे?
देखो कितना ग्रहण उसके लिए वो निषेक रचना का जो है ना प्रमाण, कि मान लेते हम मान लेते 6300 ग्रहण किए तो उसमें से वो 512 पहले ही समय में जाते हैं, हाँ उसमें भी वो हाँ ग्रहण किए हुए में से वो निषेक जो है, हाँ उसमें आबाधा काल नहीं होता, तो उसमें तो आप ऐसा कहो कि वो 5 से 12 ग्रहण किए हैं और वो निकल गए, दूसरे समय में वो है ही नहीं है, आप उसको कहो पहले समय में गए, हाँ यानी वो कथन में डिफरेंस होगा। जिस समय उसने 6300 ग्रहण किए ना, दूसरे समय में उसके पास कितने हैं, वो 512 माइनस करके जितने हैं उतने हैं उसके पास, और फिर दूसरे समय में और उसने 6300 ग्रहण किए, उसमें से भी वो दूसरे समय वाले 512 वो भी निकल गए इस तरह से, क्योंकि उसी समय जैसे हम इरियापथ में घटित करते हैं ना केवली भगवान में, जिस समय में आए उस समय में ही चले गए, या कहो तो कहो एक समय की स्थिति, ऐसा भी दोनों प्रकार से कथन आता है, इस तरह से यहाँ भी समझना। नो कर्म वर्गणा में आबाधा काल नहीं होता, जैसे कर्म में आबाधा काल होता है वैसे नौ कर्मों में आबाधा काल नहीं होता, वो खिरना चालू हो जाता है उसमें। देखो यहाँ तो हमने पढ़ा था, अभी कहते हैं और 3 समय कम 7 पूर्व कोटि, आपके पुस्तक में वो 7 शब्द है क्या, खाली पूर्व कोटि लिखा है ना, वो 7 करना, वो
कम के बाद 7 हाँ, शब्द चाहिए
कम के बाद,
कम के बाद 23 लिखा है,
नहीं वो उसके नीचे के लाइन में,
तीन समय कम
कम के बाद 7 पूर्व कोटि,
7 पूर्व कोटि
ये यहाँ है देखिए,
हाँ बराबर,
क्योंकि ये स्त्री वेदी की बात है, स्त्रियों के जो मनुष्यनी जो है वो लगातार 8 भव हो सकते हैं, तो पहले 7 भव पूर्व कोटि के किए और अंतिम भव 3 पल्ले वाला किया,
तो पहले 24 माइनस 1 किया था इसलिए 23 हुआ था,
हाँ इसलिए 23 हुआ,
24 तो उनके पर्याप्त भाव लिए और एक
पर्याप्त है, तो पुरुष वेदी स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी तीनों लिए,
24 हो गए, तो उसमें एक कम क्यों किया,
अंत में 3 पल्ले वाला लेना है,
अच्छा और बाकी पूर्व कोटि के लिए,
हाँ बाकी पूर्व कोटि के, अभी यहाँ अपर्याप्तों को नहीं लिया है, नहीं तो अपर्याप्तों के भी बीच में 8 भव हो जाएंगे और फिर उसके 24 भव और हो सकते हैं, हमने देखा था ना पहले मनुष्य, हाँ और तिरियंचों में तो संगी के और असंगी के वो उससे भी डबल हो जाते हैं, 48 × 2 = 96 होते हैं, उसमें अंतिम वह 3 पल्ले वाला करते हैं। अभी आगे बढ़िए, तथा इदमें ने पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियों में इरियापथ कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से समय अधिक 7 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 24 पूर्व कोटि प्रमाण, यानी हम समझते हैं पूर्व कोटि के 24 पूर्व कोटि लेना है, अंतर्घटित करना है। शुरू में भी इरियापथ होना चाहिए और अंत में भी इरियापथ होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में उसके वो 8 वर्ष गए, फिर संयम धारण किया, फिर वो 11वें गुणस्थान तक पहुंचा, इसलिए उतने अंतर्मूर्त वहां घटाना। इरियापथ उसका शुरू हुआ, अंतर्मूर्त 11वें में रहा और फिर उसके इरियापथ शुरू हुआ, अंतर शुरू हो गया उसका। उसके बाद वो मिथ्यात्व में चला जाएगा और उसके इतने भव हो जाएंगे, क्योंकि हमको मनुष्य गति चालू रखना है ना। आप कहेंगे वो अंतर बड़ा करना है तो इरियापथ में एक समय रखो और मार दो, तो वो कहाँ जाएगा? देव में जाएगा। तो उसका वो मनुष्य गति वाला अपना मार्गणा नहीं रहेगी उसकी। हमें मनुष्य रहते हुए उसके इरियापथ का अंतर जानना है, तो दोबारा मनुष्य होने के लिए उसको ये श्रेणी चढ़ के आया है। मिथ्यात्व में जाके वो आयु बांधेगा, तभी वो मनुष्य दोबारा होगा। हाँ, 11वें में चालू हुआ और फिर वापस आया अंतर्मूर्त में,
एक गया,
तो उसका अंतर शुरू हुआ। हाँ, एक ही अंतर्मूर्त, वो तो वो पहले वाले सारे अंतर्मूर्त वो तो माइनस करना। हाँ, इरियापथ का अंतर कब शुरू हुआ? 11वां छूटने के बाद। हाँ, तो 10वें में आया, 9वें में, यानी 6ठे 7वें तक आ गए।
अंतर चालू करना।
हाँ, तो ये भी कंडीशन चाहिए ना, वो अबद्धायु होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमने पहले ही शुरू में पूर्व कोटि वाला लिया था और स्टार्टिंग में उसको किया था 8 वर्ष के बाद।
फिर दो बार उपशम श्रेणी चढ़ाना इसको?
नहीं, एक ही बार।
क्यों? 11 से छूटा,
छूटा,
अंतर
चालू गया,
10वें में आया, 9वां 8वां।
देखो, उसको तो मिथ्यात्व तक जाना पड़ेगा।
क्यों?
क्योंकि फिर दोबारा मनुष्य बनना है उसको, मनुष्य 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 तरीके से उसको रहना है, पर्याप्त तो मनुष्य ही उसको रहना है, तो उसकी 24 भव घटित करेंगे ना।
एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के गिरा, ये
गिरा,
ये 7वें तक आएगा।
हाँ,
फिर 7वें से सीधा पहले में जाएगा,
छठे में जाएगा, छठे में जाएगा,
छठे से फिर कब मरेगा?
मरेगा तो पूर्व कोटि के अंत में मरेगा।
अच्छा,
तो मिथ्यात्व में जाएगा, बाद में आयु बंद करेगा वो सब। कब मिथ्यात्व जाएगा? कोई कंडीशन ही नहीं, आयु बंद के पहले वो मिथ्यात्व में जाएगा, क्योंकि मनुष्य 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 उसको रहना है ना लगातार।
तो चार अंतर्मुक्त हुए, 10, 9, 8, 7,
देखो 8 वर्ष हुए, फिर उसी विशुद्धि होने के लिए सम्यक तो प्राप्त कर लेनी है, या सम्यक और संयम एक साथ भले उसने ग्रहण किया, तो इसलिए पहले, और फिर अंत में भी उसको घटाना है ना। अंत में भी उसके अंतर्मूर्त जब वो 11वें में आएगा, हाँ, तो उसका भी वहां भी कुछ काल गिनना पड़ेगा। सात अंतर्मूर्त पहले ही लेना और अंत में एक समय रखना है। एक समय क्यों रखना? एक समय में वो मर जाएगा तो अंत में पूरा अंतर्मूर्त लेने की जरूरत नहीं है। 11वें में गया, इरियापथ चालू हो गया और एक समय के बाद मर गया, तो ये 7 अंतर्मूर्त पहले ही घटाना सारे, यानी उन्होंने 7वां 8वां 9, यानी वो श्रेणी के भी अंतर्मूर्त उसमें गिने, 8, 9, 10। अंत में मिथ्यात्व में क्यों लाएगा उसको? हाँ, नहीं तो उसका अंत में ही है, मनुष्य का अंतिम भव ही है वो,
तो भी शपक
नेचुरली, क्योंकि हमको गैप ही बता रही हूँ, पर गैप जब तक वो मनुष्य है तब तक की गैप है। हाँ, इसीलिए तो अंत में उसको देव में भेजना ही है। मनुष्य में आएगा तो उसका उत्कृष्ट अंतर घटित नहीं होगा, उसका अंतिम पॉसिबल मनुष्य भव हमने लिया है, उसके बाद उसको मनुष्य भव मिलने ही वाला नहीं है। पर्याप्त उनके सभी लिए ना हमने, इसलिए 24 पूर्व कोटि लिए, तीनों वेद वालों में वो जन्मता रहेगा, तो 8, 8 और 8, 24 हुए। अंत में पल्ले वाला वो नहीं लेना है, क्योंकि इरियापद घटित करना है ना, तो इसलिए वो भोग भूमि का अंत में नहीं चलेगा भव। आठ वर्ष कम 24 पूर्व कोटि है, एक एक मिनट में वहाँ नहीं गए, वो तो मनुष्य नहीं की बात है, हम अभी पर्याप्त मनुष्यों को ही पढ़ रहे हैं। पर्याप्त मनुष्यों की बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ेंगे अब, और यानी अभी मनुष्यनी में क्या है, तो मनुष्यनी के भाव कितने हो गए लगातार? 8 हो गए, तो तो पहले भव में वो जैसे हमने देखा था उतने सात अंतर्मुर्त, आठ वर्ष प्लस सात अंतर्मुर्त, वो तो इरियापत उसने ग्यारहवा गुणस्थान प्राप्त करके फिर छोड़ा भी, ग्यारहवा भी उसमें लेना है ना, क्योंकि अंतर जब शुरू होता है उसके पहले ग्यारहवें गुणस्थान का भी एक अंतर्मुर्त गिनना पड़ेगा। तो उसका अंतर शुरू हुआ, फिर लगातार आठ भव हुए, आठवें भव के अंत में फिर उसने वो तो उपशम समय तो प्राप्त किया, संयम प्राप्त किया, फिर ग्यारहवें में पहुंचा, तब इरियापथ उसका अंतर समाप्त हुआ, चालू हो गया और फिर एक समय में मरा। इस तरह से लेना भाववेद। तथा यहां तक तो हमने कल पढ़ा था, तथा तपक कर्म का उत्कृष्ट अंतर काल क्रम से दो अंतर्मूर्त अधिक आठ वर्ष, उसके लिए तो सात अंतर्मूर्त लिए थे, ये तो तप कर्म यानी वो संयम ग्रहण करते उसका तप कर्म शुरू हुआ। हाँ वो तो हो गया ना, वो पूरा ही पढ़ा हमने।
जब अंत में लेना, नेक्स्ट टाइम जब लिया है तो उसको उपशम में केवल ग्यारह के बारे में मिला सकते हैं, उसके बाद वो अंतिम भाव जब वो चला गया।
हाँ, परंतु उसके कितने कितने कम करना पड़ेगा, चौदहवे का एक अंतर्मूर्त, तेरहवे का अंतर्मूर्त,
नहीं कम नहीं करना, अब तो वो आपने चालू कर दिया ना, आपने कहा
चालू किया, परंतु
चालू हो गया उसका तो खत्म, मेरा काम
वो खत्म हुआ, पर उसके बाद के उसके मनुष्य भोग कटना पड़ेगा ना, आप नहीं समझे।
हाँ।
वो अंतर ज्यादा होगा कि जो ग्यारहवे में एक समय गया उसका, मान लेते सौ समय वाले, अभी हम पूर्व कोटि को भूल देते हैं, सौ समय है, यदि हम शुरू में मान लेते दस समय उसने बिता दिए, दस समय के बाद उसका अंतर शुरू हुआ, तो अभी वो उसकी तो कितनी स्थिति रह गई थी, 90 वाली, अंत में एक ही समय हम घटाते हैं तो उसके पास 89 बचेंगे, 89 का अंतर होगा बराबर। और यदि हम लास्ट में उसको शपक में भेजना है तो बारहवें का अंतर्मूर्त, तेरहवें का अंतर्मूर्त, चौदहवें का अंतर्मूर्त, तीन अंतर्मूर्त और नीचे आना पड़ेगा। हाँ, तो 89 के बदले में और अब कम हो जाएगी उसमें, 80 हो जाएगी, मान लेते ना। उसका अंतर उत्कृष्ट नहीं घटित होगा, उत्कृष्ट अंतर घटित होने के लिए है, पॉसिबिलिटीज ऑफ एवरी पॉसिबल जो कुछ है। ये तपकर्मा का विनोद हम आगे कब पढ़ रहे हैं, वो तो हो गया अपना ना। तपकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से दो अंतर्मूर्त अधिक आठ वर्ष न्यून 24 पूर्व कोटि प्रमाण, वहाँ इरियापद के लिए वो सात अंतर्मूर्त की जरूरत है, यहाँ तप कर्म कहने वो संयम प्राप्त हुआ उसको, और मनुष्य में दो अंतर्मूर्त अधिक आठ वर्ष कम आठ पूर्व कोटि प्रमाण है। ये समझ में है ना, वहाँ तो पर्याप्त मनुष्य था और यहाँ मनुष्य नहीं है, इसलिए लगातार आठ भव लिए। तथा क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल, क्रियाकर्म ने सम्यक तो प्राप्त किया, छूटा और फिर बाद में प्राप्त हुआ, क्रम से दो अंतर्मूर्त अधिक आठ वर्ष न्यून 23 पूर्व कोटि, पर्याप्तों के लिए 23 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य, क्योंकि उसको यहाँ तो क्रियाकर्म की बात है, तपकर्म की नहीं है। तपकर्म के लिए अंतिम भोग भी पूर्व कोटि का लिया था हमने, क्रियाकर्म के लिए वो तो अंतिम भोग भूमि वाला लिया, और दो अंतर्मूर्त अधिक आठ वर्ष न्यून सात पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य है, ये स्त्रीवेदी के लिए है। अब मनुष्य अपर्याप्तकों में प्रयोग कर्म और समवधान कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा। हाँ, प्रश्न आपका क्या है? हाँ देखो, दर एक भव में सम्यक तो प्राप्त करेंगे तो उसका अंतर एक कोटि होगा, एक पूर्व कोटि। कैसे? सम्यक दर्शन के बाद क्रियाकर्म का अंतर कब शुरू हुआ? हाँ, सम्यक दर्शन कितने काल तक रहा उसका? कंटिन्यूस रखा तो अंतर कहाँ हुआ? उसका काल हुआ। आप काल और अंतर में गफलत कर रहे हैं। देखो फिर आपकी कहां भूल हो रही है मैं आपको बताती हूँ, आप पहले सुनो बराबर। क्रिया कर्म का अंतर कब होगा? सम्यक तो छूटेगा तब होगा क्या? सम्यक तो चालू रहेगा तो होगा? छूटेगा कब? छूटा एक अंतर्मूर्त में छूट गया, तो एक अंतर्मूर्त छूट गया तो आठों ही भवन तक वो मिथ्या दृष्टि रहा है। स्त्री वेदी हो सकता है, द्रव्य से भी हो सकता है। अब मनुष्य अपर्याप्तों की बात करेंगे। मनुष्य अपर्याप्तकों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय। देखो हमेशा हम नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं कहते, यहाँ अंतर है कहेंगे। क्यों? ये मनुष्य अपर्याप्त ये जो अवस्था है मार्गणा है वो सांतर मार्गणा है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि एक समय के लिए उसमें एक भी जीव नहीं है, तो ये जघन्य अंतर कहा नाना जीवों की अपेक्षा। और उत्कृष्ट अंतरकाल ने कोई भी मनुष्य अपर्याप्त में है ही नहीं, ऐसे कब तक बनेगा? पल्ले के असंख्यात भाग काल तक। तो उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, ये नाना जीवों की अपेक्षा कहा। एक जीव की अपेक्षा अंतर होगा कि नहीं होगा? देखो मनुष्य अपर्याप्त बना रहे तो अधिक से अधिक कितने उसके भव हो गए अपर्याप्तों के? लगातार आठ हो गए ना, आठ भव हो गए। तो आठ भव में ऐसा होगा कि वो मनुष्य अपर्याप्त बना रहे और उसका कोई प्रयोग कर्म ही नहीं, यानी उसको कोई कर्म ही नहीं बंधे, सात या आठ या ऐसा कुछ होगा नहीं, उसके तो कर्म तो बनते रहेंगे। और समवदान भी है और योग वाला भी है वो, तो इसलिए वो योग नहीं है और फिर शुरू हुआ ऐसा तो बनने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए उसमें एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। हाँ आप संख्या की बात पूछ रहे हैं। हाँ आपका प्रश्न है, मनुष्य हम पर्याप्त अपर्याप्त मिलके असंख्यात कहते हैं, और जब वो उसमें अंतर है कोई भी जीव उसमें नहीं है तो मनुष्य संख्यात ही रह जाएंगे। बराबर है आपका, पर्याप्त ही मनुष्य रहेंगे तो वो संख्यात ही रहेंगे उस समय तक, बाद में जब वहाँ जीव अन्य अन्य उत्पन्न होंगे तो वो असंख्यात तक भी चला जाएगा प्रमाण उसका। जब हम असंख्यात कहते वो उत्कृष्ट संख्या है उसकी, हाँ अपर्याप्त ही असंख्यात होते हैं, पर्याप्त मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं। 29 अंक वाली वो भी मैक्सिमम है, वो पर्याप्त उनकी है। हाँ तो एक जीव की अपेक्षा अंतर क्यों नहीं वो समझ में आया ना, क्योंकि उसका योग भी बना रहेगा और कर्मों का बंध भी बना रहेगा। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? तो कहते नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्योंकि भले वो उसमें नहीं है तो भी उसके जो अधक कर्म जो है ना, किसी न किसी जीव के वो तो उसी अवस्था में रहेंगे, इसलिए वह अंतर नहीं कहा उसने। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, एक समय हमने हमेशा ही घटित किया था, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम आठ अंतर्मूर्त है, यानी उसका एक एक भव गिना है, आठ लगातार भव हो गए इसलिए वो आठ अंतर्मूर्त कहे। ये जो कल अपना प्रश्न था ना असंख्यात पुद्गल परावर्तन का, वो भी आने वाली ही बात आगे, हाँ उसका सॉल्यूशन मिल गया। देवगति में देवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है, क्योंकि जब तक देव है भले एक भव है उसका, परंतु ऐसा नहीं होगा कि उसका योग रुक गया और कर्मों का ग्रहण रुक गया और फिर उसने वापस ग्रहण किया, तो ये तो निरंतर है। क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है? तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है, यानी हमेशा ही कोई ना कोई समय दृष्टि वहां रहेंगे ही। एक जीव की अपेक्षा अंतर कैसे घटित होगा? आयु के स्टार्टिंग में उसने समय तो प्राप्त किया, फिर पूरे मिथ्यात्व अवस्था में बिताया, अंत में जाके फिर सम्यक्त्व ग्रहण किया, तो उसके बताएंगे। वो तिरंतर हुआ, निरंतर करो। सेकंड लाइन में एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है, यानी एक अंतर्मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व में आया और फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया। और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 31 सागर है। ये 31 सागर कहाँ की है आयु? 9वें ग्रह वेग के। हाँ, क्योंकि एक संयत जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरते हुए असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान में द्रव्य संयम के साथ उपशम सम्यक्त्व के दीर्घ काल तक उसका पालन कर मरा। कौन सा जीव लिया है? कोई संयमी। हाँ, उपशम श्रेणी पर चढ़ के उतरा है, तो जो उसने द्वितीय उपशम सम्यक्त्व किया था ना, तो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व का काल बड़ा है, तो असंयत गुणस्थान में आकर असंयत होकर मरा, तभी उस द्रव्य लिंग तो है उसका। द्रव्य संयम क्यों कहा? क्योंकि जब तक छठा सातवां गुणस्थान है तब उसको हम भाव संयम कहेंगे। अब वो चूंकि समय दृष्टि है अभी भी, फिर भी उसको क्या कहा यहाँ? द्रव्य संयम कहा है? चौथा गुणस्थान है,
और मतलब है मुनि अवस्था।
मुनि अवस्था है बिल्कुल। हाँ,
और भाव से जो है
चौथा गुणस्थान है, तो उसको द्रव्य संयम कहा है? द्रव्य लिंग हुआ, ये द्रव्य संयम हुआ। नहीं नहीं, वो तो दूसरी कुछ
ऐसा है कि ये बात थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल चल रही है। जैसा हमने द्रव्यलिंगी मुनि कितनी अपेक्षा से कहे जाते हैं, तो जो मिथ्यात्व में है लेकिन मुनिवत पालन करता है 28 मूलगुण, उसको द्रव्यलिंगी कहेंगे, ये बात सही है। लेकिन यशपाल अन्ना ने उनके गुणस्थान विवेचन में ऐसा लिखा है कि चौथे गुणस्थानवर्ती और पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों को भी द्रव्यलिंगी हम कह सकेंगे। तो उस पॉइंट पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि द्रव्य लिंग ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, तो यहाँ प्रूव होता है ना, द्रव्य संयम है, इसका अर्थ क्या हो गया कि भाव संयम नहीं है, लेकिन वो वैसा मूलगुण तो पाल रहे हैं, तो इसका अर्थ चौथे गुणस्थान में भी द्रव्य लिंग है, ये बात निश्चित होती है, ऐसा मैंने इसको इन्फॉर्म किया।
वो क्या चर्चा चलती है ना विद्वानों में या अन्य, तो उसकी बात जब आती है तो इसलिए हम एक दूसरे को कहते देखो यहाँ ये बात आ गई है।
लेकिन ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है।
हाँ देखो,
ये बात सही है,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मुनि अवस्था है ना, भले वो मिथ्यात्व में भी चले गए, नहीं नहीं वो बात नहीं पूछ रहे हो, उनका जो बाह्य में वो भले उस संयमी नहीं भी हुए थे और उन्होंने संयम यानी वो सारे व्रत अंगीकार किए हैं, तो गुणस्थान हम उनका नहीं जान सकते हैं। हाँ, उनका द्रव्य बराबर है कि नहीं, द्रव्य संयम बराबर है कि नहीं, इतनी ही जांच हमको करनी है। जांच कहाँ करेंगे? द्रव्य संयम में भूल हो तो मुनिवत वो हम हट जाएंगे वहाँ।
लेकिन वो द्रव्य संयम बराबर है।
हाँ,
और वो भाव संयम है कि द्रव्य संयम,
वो अपना ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में भी बदलता है और हमें वहाँ देखना ही नहीं है, वो तो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। तो हमें तो वो द्रव्य संयम देख के ही उनके साथ उनके जो आहार दान आदि जो बातें हैं, उनके नमस्कार, उनका जो विनय है, वैयावृत्ति जो कुछ है, वो उस हिसाब से ही होता है, क्योंकि हम व्यवहार का पालन करते, वो उनका व्यवहार देख के ही करते हैं। क्या लेना?
और हाँ, हमने गलती से किसी को द्रव्य संयम मान के और उसके वास्तव में भाव संयम है ऐसा किया, तो देव शास्त्र गुरु की अवर्णवाद हो क्या, मेरे दर्शनम मौन कर्म का बल बदल गया?
बिल्कुल बिल्कुल
होगा। सूत्र के सूत्र के अनुसार हम गलती कर दी हमने, तो अपने को पढ़ना ही नहीं, अपने को अपना ही देखने का मतलब
बराबर है। वो उनके द्रव्य संयम और रेयन सार में भी बात है, रेयन सार में लिखा है कि मुनि का कौन सा गुणस्थान है वो देखकर उनको आहार आदि वो विधि नहीं होती है। उनके उनका ऐसा कहना है कि कोई द्रव्य संयम बराबर पाल रहा है, द्रव्य लिंग जिसका परफेक्ट है, और हमने वो भावलिंग नहीं है कहकर उनके साथ अभिनय किया उसका, तो तीव्र बंध होगा वहाँ, क्योंकि देव गुरु और शास्त्र का वहाँ अभिनय हो गया है। ये तो भावलिंग द्रव्यलिंग ये तो चर्चा हम आगम के आधार से करते हैं, परंतु मुनि को जब हम कोई भी उनके साथ विनय आदि नमस्कार आदि करते हैं तो उनका द्रव्य संयम देखकर ही करते हैं, वो यथोचित होना आवश्यक है। उसमें जो कुछ चल रहा है या चलता रहेगा और फिर भी उनको मुनि मानकर उनके पीछे दौड़ेंगे तो भी वही हो गया भाई। जिसका द्रव्य संयम परफेक्ट नहीं है और उसको माना तो मिथ्या तो हो गया उसका, तीव्र मिथ्या तो हो गया उसका। किस क्यों मान रहे आप? उसका द्रव्य संयम नहीं है फिर भी मुनि क्यों मान रहे? कि आशा से, स्नेह से, लोभ से, मूर्खता से है ही नहीं, पर मालूम ही नहीं हो क्या उसको। वो नहीं बदलता द्रव्य संयम जिसने ग्रहण किया है, हाँ उसमें कोई दोष लगे वो बात है। हाँ
लेकिन द्रव्य संयम का अष्टपाउल करना बड़ा अच्छा दिया, किसको मतलब क्या देखना, वो अष्टपाउल में जो गाता है वो तीन चार गाता लिंग बहुत आती है, बहुत बढ़िया है कि वो पांच मतलब ये 28 मूल गुणों का पालन करता हूँ।
वो 28 मूल गुण ही हमको परफेक्ट होना है, हमको देखना है कि वो बराबर है कि नहीं, वो भी हमारा कर्तव्य है। हो आपड़े शू करवा छे एवं नथी, श्रावक का कर्तव्य अगर चूक जाएगा श्रावक यानी ऐसा नहीं कि दूसरों को वो तो झाड़ू मारते बैठना है, परंतु वो तो उसका निषेध भी होना चाहिए। ये जो संयम प्रकाश नाम का एक ग्रंथ निकला है दिल्ली से, तो उसमें चार है, तो उसमें तो लिखा है ये श्रावकों का कर्तव्य है कि वो मुनि धर्म बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, नहीं तो चाहे जैसे को मुनि मानो आप और ये धर्म का जो सच्चा धर्म है उसका लोप हो जाएगा।
देखो यहाँ पर एक बात ऐसी भी प्रूव हो रही है, चौथा गुणस्थानवर्ती जीव है वो मरकर नौवे ग्रह गया। कल बात निकली थी तो आपने कहा था ग्यारहवे में मौत आएगी, तो वो सर्वार सिद्धि की बात,
सर्वार सिद्धि की बात,
सर्वार सिद्धि की बात है,
नहीं वो बात अलग है।
नहीं नहीं नहीं
अब यहाँ तो
नहीं नहीं मैंने कुछ अलग समझ लिया
आपकी गलत। यहाँ तो क्या बात है, अभी उसका द्वितीय ऑप्शन चल रहा है, एक बार श्रेणी चढ़कर उतरा है उसका द्वितीय ऑप्शन चल रहा है, द्वितीय ऑप्शन में सातवें से छठे फिर वो पांचवें चौथे तक आकर कुछ काल, क्योंकि बड़ा काल है ना द्वितीय ऑप्शन का काल बड़ा है, और फिर वो चौथे में मरा उपशम समय के साथ मरा, तो देव में जाकर क्या होगा उसका भी अपर्याप्त अवस्था में। वैदिक समय तो में आ सकता है ना वो, हाँ अच्छा पढ़ लिया आपने। चलो देखो ऊपर वो गया, देखो उपशम समय तो के दीर्घ काल तक उसका पालन कर मरा, और उपरिम ग्रहवेक में, उपरिम का अर्थ क्या होता है नौवा। देखो पहले तीन भाग करते ग्रहवेकों के, अधो मध्यम और उपरिम, या हठ्ठिम और मध्यम और उपरिम ऐसा कहते ना, जघन्य ने हेट्ठी माँ, जघन्य का अर्थ अलग होगा, यह नीचे वाला अधो अधो कहो आप, हेट्ठी माँ कहो या अधो अधो कहो। हाँ नीचे वाले का या तो अधो कहो या हेट्ठी माँ कहो, जघन्य तो संख्या में होगा ना। हाँ हाँ हेट्ठी माँ कहते हैं, हाँ या अधो कहते हैं, बीच वाले मध्यम वाले और ऊपर उपरिम है, उपरिम के भी तीन, हाँ नीचे वाला मध्यम वाला उपरिम वाला, तो इसको उपरिम कहा। हाँ तो वहां वो उत्पन्न हुआ, तो क्रिया कर्म का प्रारंभ किया, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में उपशम है ना, उसको बाद में सम्यक तो प्राप्त करने की बात ही नहीं रखा, उपशम सम्यक तो द्वितीय उपशम के साथ आया हुआ जीव है, तो द्वितीय ऑप्शन वो तो उसका क्रियाकर्म का देव के साथ क्रियाकर्म का प्रारंभ था, क्रियाकर्म तो उसके पहले से था ही, मनुष्य में उसका क्रियाकर्म था, परंतु अभी देवगति के साथ क्रियाकर्म शुरू हुआ, इसलिए कहा क्रियाकर्म का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ शब्द क्यों डाला समझ में आया ना, देवगति में उसका क्रियाकर्म शुरू हुआ पहले ही समय से। फिर उपशम सम्यक्त्व के काल में को हुआ है, पहला समय विग्रह गति में विग्रह गति से कहेगी ना, वो समय दृष्टि है ना, उसको विग्रह गति में, समय दृष्टि को क्रियाकर्म विग्रह गति में भी है, हम क्रियाक्रम है शरीर के बाह्य कुछ क्रियाएं कोई क्रिया हाँ, वो वैसा नहीं है, वो समय दृष्टि है उसके क्रियाक्रम है, इतना ही लेना आत्मन आत्मा आत्माधीन ऐसा कुछ था ना
होगा।
देखो अभी उसने उपशम समयक्त के काल में छह अवली काल शेष रहने पर ये बड़ा सा बड़ा काल लिया छह अवली वाला, क्योंकि द्वितीय उपशम का जितना काल शेष रहा था उसमें से भी हमको कट करना है, क्योंकि क्रियाकर्म का अंतर शुरू कर देना है। साधन गुणस्थान को प्राप्त होकर उसका अंतर किया। तदनंतर 31 हाँ प्रश्न आप समझ, देखो उपशम समयक्त का जितना काल है उतना पूरे होने के बाद वो क्या होगा, वेदक सम्यक दृष्टि होगा। देखो द्वितीय उपशम उसने किया था श्रेणी चढ़ने के पहले, पूरी श्रेणी चढ़कर उतरा, फिर चौथे में आया, अभी उसका द्वितीय उपशम का कुछ काल बच गया है, तो उसी अवस्था में मरण हुआ। प्रथम उपशम में तो नहीं होता परंतु द्वितीय उपशम में होता है ना, तो मरण होगा तो उसका वो क्रियाकर्म चालू रहा, तो देवगति में क्रियाकर्म उसका हुआ। द्वितीय उपशम का जितना काल थोड़ा बचा था उसमें से भी छह अवली घटा देना है, तो क्रियाकर्म का अंतर चालू हो गया और जाके वो भी 31 सागर के अंत में। हाँ कौन सा वो सम्यक्त होगा उसको, हाँ प्रथम उपशम होगा ना, हाँ अंतर किया। तदनंतर 31 सागर में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्तों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ प्रथम उपशम लेना, क्योंकि द्वितीय उपशम करने वाला तो मनुष्य ही होता है, सातवें वाला होता है। अब देखो ये अंत में जो उसने उपशम समय को प्राप्त किया है वो एक तो जघन्य अंतर्मूर्त वाला है, और फिर उसमें भी काल घटाएंगे साधन के द्वारा। फिर साधन गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और मनुष्य हो गया साधन, क्योंकि उपशम का काल और कम हो जाएगा। देखो उपशम का काल पूरे होने तक नहीं मर सकता है, प्रथम उपशम सम्यक तो यदि बना रहता हाँ, तो उसकी अपेक्षा से उसको लिया है। नहीं यार यहाँ तो देव है ना, वो तो नरक में जाने का सवाल ही नहीं है ना, ही तिर्यंच में जाएगा। तिर्यंच में जाएगा कि नहीं, क्यों नहीं जाएगा, कहाँ से शतार सहस्रार तक के मनुष्य तिर्यंच दो ऑप्शन है, ऊपर के सारे मनुष्य में ही जाने वाले हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम। वो बताया ना, वही बताया, समझ में आया।
नहीं जो भाई साहब बोल रहे हैं मतलब 12वें सर्ग से ऊपर मतलब तिरंच मरे तो 12वें सर्ग से ऊपर नहीं जाया, और 12वें सर्ग से ऊपर का मरे तो मनुष्य होगा तिरंच नहीं होगा, ये भी दोनों तरफ रूल है। अच्छा मतलब जो 12वें सर्ग से ऊपर का
वो तो मनुष्य गति ही बांधते हैं,
इसी प्रकार
तिरंच गति कहाँ तक बन सकती है, शतार सहस्रार तक। हाँ
अभी कोई तिरंच है वो भी मर के 12 तक ही हो सकता है।
हाँ पांचवे मैंने उस दिन 16 की बात की, परंतु अरविंद भाई ने पेपर देखकर बोला 12वें तक, मुझे ऐसा 16वें तक ऐसा लगता है, या तो आपने तो पढ़कर ही बताया था तिरंच कहाँ तक जा सकता है।
उस दिन आपने मुझे देख के बोला था,
नहीं इन्होंने देख के बताया था, पर मुझे अभी भी उन्होंने 4 देख के बताया था मुझे, ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन था अभी पता नहीं, कभी कभी रॉन्ग ऐसा कुछ होता है। उस दिन तो आपने देख के बताया था।
अच्छा तो
तो अच्युत 16वें है, तो उस दिन आप 12 की बात कर रहे थे, आप दोनों ने 12 की बात की थी, देवेंद्र भाई ने और क्या अच्युत है ना, मैंने इनको भी बताया था, मैं वो दूसरे पुस्तकें ढूंढ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 16वें में और वो 12वें। हाँ
लेकिन आपने 16 बोला था।
हाँ
और फिर मतलब 12
है ना 16, चलो ठीक है अपना समाधान हो गया। हाँ
नहीं कुछ मतलब गलती हो गया होगा।
हाँ हाँ
लेकिन ये है कि मतलब इससे ये होता कि 3 इंच भर के 16 तक जा सकता है।
16 तक जाता है। कल ही अपनी बात हुई ना, मैंने तत्वार सूत्र निकाल के देखा।
तो छड़ाला की लाइन सही है, जो श्रावगत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, तो श्रावगत तो पंचम गुण स्थान बढ़ती है, पाल रहा है, इसलिए वो लाइन
16वें स्वर्ग तक जाता है, चौथे पांचवे दोनों जाएंगे। देखो अभी हम यहाँ तक पढ़े, ये तो हो गया ना अपना दूसरा पैराग्राफ, भवनवासी की बात है। भवनवासी वानवेंतर और ज्योतिषी देवों में पहले तो देव इन जनरल बात की उन्होंने, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, वह निरंतर है। ये प्रयोग कर्म तो हमेशा ही बना रहेगा, वो तो उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता, इसी प्रकार सब देवों के कहना चाहिए। क्रियाकर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, वह निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर कब घटित करेंगे, हाँ मिथ्यात्व में गया और फिर वापस सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो उसका क्रियाकर्म का अंतरकाल होगा। और उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से 5 अंतर्मूर्त कम 1.5 सागर, ये तो भवनवासी के लिए उसकी उत्कृष्ट आयु जो है, तो उसमें से भवनवासियों में सम्यक्त्व के साथ तो कोई जन्मेगा नहीं, तो इसलिए पहले वो 4 अंतर्मूर्त वहाँ घटाना, और लास्ट में जाकर फिर उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया तो वो 1 अंतर्मूर्त वहाँ घटाना। 5 अंतर्मूर्त कम साधिक 1 पल्य, ये किसके लिए, व्यंतरों के लिए। और 5 अंतर्मूर्त कम साधिक 1 पल्य वो ज्योतिषियों के लिए। सौधर्म कल्प से लेकर शतार सहस्रार कल्प तक के देवों में क्रियाकर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल का विचार सामान्य देवों के समान करना, समाना हुआ है, समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अतिशीघ्र सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, यानी छोटे जघन्य अंतर्मूर्त में वापस वो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, उसके यह अंतरकाल पाया जाता है। क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल सर्वत्र आदि और अंत के 2 अंतर्मूर्तकम तथा अंतर्मूर्तकम, ये अंत के बाद कुछ दंड पड़ गया, हाँ अंतर्मूर्त, हाँ यहाँ डैश के बदले वो आड़े के बदले खड़ा हो गया उसको। देखो कैसी बात चल रही है यहाँ पर, क्रियाकर्म का अंतरकाल चल रहा है ना, हम पढ़ेंगे ना तो आपको ख्याल में आएगा आगे क्यों 12वें तक ही क्यों लिया, उसकी भी बात आपके ख्याल में आएगी। तो क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल सर्वत्र आदि और अंत के 2 अंतर्मूर्तकम तथा अंतर्मूर्तकम आधा सागर अधिक क्रम से, अभी किसमें अधिक मिलाना है, हाँ, तो 7 आधा आधा सागर बढ़ा है ना उसमें, हाँ तो क्रम से 2, 7 यानी सौधर्म ईशान के लिए 2, तो तीसरे चौथे के लिए 7, इस तरह से क्रम से लेना उसको, पांचवे छठे के लिए 10, सातवें आठवें के लिए 14, नौवें दसवें के लिए 16 और 11वें 12वें के लिए 18 सागर प्रमाण है, उसमें आधा सागर अधिक किया था और कम कितना किया, अंत के दो अंतर्मूर्त तथा अंतर्मूर्त कम। देखो वहाँ की आयु कितनी होती है जनरल, अभी हम सौदर्भ ईशान की करेंगे। हाँ तो सौदर्भ ईशान के दो सागर अधिक से अधिक है। घाता युष्क वाले की कितनी बढ़ जाती है, अंतर्मूर्त कम आधा सागर
बढ़ जाती।
हाँ बढ़ जाते हैं ना, पहले संयमी थे, अधिक आयु बांधी थी, फिर संयम का घात हुआ तो ऊपर की आयु घटकर नीचे के देवों में आ गए वो, तो वहाँ आधा सागर में ज्यादा हुआ, तो अंतर्मूर्त कम आधा सागर उनको ज्यादा रहते। हाँ ऐसा ऐसा, अभी सात की ऐसा नहीं समझना, उसमें ऊपर की थोड़ी ज्यादा थी, अभी जो कुछ ज्यादा थी तो नीचे की थोड़ी अधिक रह गई, यानी दो सागर नहीं हुई, ढाई सागर में एक अंतर्मूर्त कम इतनी हो गई। ये तो अंतर्मूर्त घटाया इसलिए वो आधा सागर में अंतर्मूर्त कम होता है इसलिए उसको घटाया, और पहले कितना कम किया, अंत के दो अंतर्मूर्त कम किए, अंतिम दो अंतर्मूर्त, क्योंकि पहले तो क्रिया कर्म का कब शुरू होगा, वहां तो सौधर्म से लिया ना, सौधर्म से लेने में क्या प्रयोजन था, भवनत्रिक में तो पहले में जाके बाद में वहां सम्यक तो प्राप्त करना था, अब यहाँ सम्यक के साथ आया है ऐसा जीव लेना, इसलिए उसका अंतरकाल शुरू हो जाता है डायरेक्ट, इसलिए आदि के दो अंतर्मूर्त कम इतना लेना। आनत प्राणत कल्प से लेकर उपरिम उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है, ये तो साधिक का प्रमाण है ना, घातायुष्क वाले वो यहाँ तक ही होते हैं, उसके ऊपर नहीं है, तो ऊपर की जितनी आयु है उतनी रहती है। नाना जीवों की अपेक्षा कौ हुआ है की करना, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, वह निरंतर है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल, काल क्यों डाला, जघन्य अंतर अंतरकाल, अच्छा एक शब्द है अंतरकाल, अंतर का काल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल सर्वत्र आदि और अंत के दो अंतर्मूर्त कम क्रम से, अभी वहां पर क्रम से ने भी 12 तक लिए ना हमने, 13वें 14वें के लिए 20, 15 16 के लिए 22, और फिर क्रम से एक एक ग्रहवेक, ग्रहवेक में पहला ये 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 नौवे ग्रहवेक के लिए। हाँ हाँ सम्यक दृष्टि आएगा तो उसका क्रियाकर्म चालू है, परंतु उसको अंतर शुरू करने के लिए सम्यक तो में से वो नीचे तो उतारने ना उसको, तभी उसका अंतर शुरू हो जाएगा। यहाँ इतना विशेष कहना चाहिए कि और कोई आ रहे, अकेली हो और कोई आ रहे,
मेरे ब्रदर से शायद आपकी बात हुई थी।
आहा।
वो तो है नहीं अभी मैं।
अच्छा कोई बात नहीं, देखो यहाँ हमारा विषय चल रहा है, ये कर्म की बात चल रही है कुछ, अभी यहाँ अंतर की प्ररूपणा चल रही है, अंतर किसे कहना है कि कोई मार्गणा कोई विशिष्ट बात चल रही है जीव की, या जो कोई सम्यक दृष्टि है तो उसका अंतर कैसे कहेंगे, सम्यक तो छूट गया मिथ्या तो में रहेगा और फिर बाद में सम्यक तो फिर दोबारा प्राप्त करेगा, तो उसको हम कहेंगे उसका अंतर इतना हुआ, अंतर यानी गैप। यहाँ क्रियाकर्म ने सम्यक दृष्टि के क्रियाकर्म पाई जाती है, क्रियाकर्म ने बाहर शारीरिक कोई क्रिया करनी उसकी बात यहाँ नहीं है, भले वो समय दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में हो या विग्रह गति में भी हो तो उसको क्रिया कर्म कहने में आता है। तो यहाँ अभी हमने जो पढ़ा था कि एक जीव की अपेक्षा हम जो देवगति में उत्कृष्ट अंतर देख रहे थे क्रिया कर्म का, उसमें हमें अभी 13वें 14वें और ऊपर के स्वर्गों में घटित कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे अंतर घटित होगा, तो उसके लिए वह आगे बात विशेषता बताती है। देखो यहाँ इतना विशेष कहना चाहिए मिला कि उपशम श्रेणी पर चढ़कर फिर उतरकर असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में द्रव्य संयत होकर, देखो वो तो मुनि है, भावलिंगी मुनि, भाव संयम कब तक कहेंगे, छठे सातवें गुण स्थान, ऊपर श्रेणी भी चढ़कर आए छठे तक आए, सातवें से होकर छठे तक आए, छठे से पांचवें में आए चौथे में आए, तो हम क्या कहेंगे, वो अभी द्रव्य संयमी है कहेंगे। द्रव्य संयमी का अर्थ बाहर की उन्होंने कुछ क्रियाएं नहीं छोड़ दी है, परंतु अभी उनका गुणस्थान चौथा है। फिर मरकर अपने अपने इच्छित विमान में उत्पन्न हुआ है, इच्छित यानी इच्छा के अनुसार, ऐसा नहीं समझना इष्ट लिखो वहां, क्योंकि जितनी आयु बांधी हो जिस विमान की वहां उत्पन्न हो गए, और उसके क्रिया कर्म की आदि होती है, आदि ने शुरू होती है, तो क्या पहले नहीं थी इसलिए शुरू हुआ। अभी अपना भंग कौन सा चल रहा है क्राइटेरिया देवगति का, तो देवगति के साथ चौथा गुणस्थान कब शुरू हुआ, मनुष्य रूप से मरा तभी, तो देव में आया इतने ही उसी समय से उसका क्रियाकर्म है ना चौथा गुणस्थान, देव के साथ चौथा गुणस्थान चल रहा है। अभी वो कौन सा समय दृष्टि है उसका, उपशम है, वेदक है क्या क्षायिक है, उपशम है ना, क्योंकि द्वितीय उपशम करके उपशम श्रेणी चढ़कर नीचे आया है, उसका द्वितीय उपशम चल रहा है, और चौथे में द्वितीय उपशम सम्यक के साथ मरा है, तो अभी अपर्याप्त अवस्था में उसका द्वितीय उपशम चलेगा, बाद में क्या होगा उसका। फिर उपशम सम्यक्त्व के काल में छह आवली काल के शेष रहने पर, ये सासाधन गुण उपशम सम्यक्त्व के काल में, यदि किसी जीव के अनंतानुबंधी आदि क्रोधमान माया लोभों से किसी का उदय हो जावे, तो कम से कम एक समय पूर्व या अधिक से अधिक 6 आवली पूर्व वो सासाधन नाम का दूसरे गुणस्थान में आता है, तो उसमें आते ही उसको क्रियाकर्म अभी नहीं रहा, तो क्रियाकर्म की गैप चालू हो गई, अंतर शुरू हुआ, और अपनी अपनी आयु में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल के शेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। अभी इतना काल उसने सागरों का बिताया है, तो अभी उसको दोबारा उपशम सम्यक्त्व ही होगा, क्योंकि पहले जो उपशम सम्यक्त्व के साथ आया था और मिथ्यात्व में से 3 टुकड़े हुए थे, वो तो असंख्यात वर्षों में तो वो सारे मिथ्यात्व रूप हो जाते, इसलिए अभी यहाँ दोबारा उसको समय तो प्राप्त करना है, तो अभी उसको उपशम समय तो प्राप्त होता है, और इस तरह अंतरकाल निकल आता है। ये गैप हो ना, इतने काल तक वो मिथ्या दृष्टि रहा और आयु के अंत में समय दृष्टि हुआ, तो फिर उसको क्रियाकर्म शुरू हुआ, तो उसका ये गैप इतना बड़ा होता है। फिर सांसाधन गुणस्थान को प्राप्त होकर और मरकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, ऐसा कहना चाहिए, उपशम का काल घटाने के लिए उसे सासाधन में जाकर मरा, ऐसा घटित किया है। इस प्रकार ये 2 अंतर्मूर्तकम अपनी अपनी कही गई सागरोपम सागरों प्रमाण उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। अंतिम अंतर्मूर्त और पहला अंतर्मूर्त, जिस सम्यक्त्व के साथ जन्मा था उसका अंतर्मूर्त, फिर वो छूट गया तो उसका अंतर शुरू हो गया, और जाके आयु के अंत में फिर उपशम समय को प्राप्त किया, उसका एक अंतर्मूर्त, ये दोनों को घटाएंगे तो मैक्सिमम 9वें ग्रहवेग के लिए 31 सागर इतना अंतर प्राप्त होगा क्रिया कर्म के लिए अंतर।
ये क्रिया कर्म अपन ने ये क्यों माना कि वो जो मरा और तब उसके चालू हुआ, क्योंकि जो वो द्रव्य सेम है, चौथे गुणस्थान में आ गया।
हाँ, यही बात मैंने की थी, देखो पहले वो उसका क्रिया कर्म था, गति कौन सी थी,
मनुष्य
गति, और अपना क्राइटेरिया है देवगति का, देवगति में घटित किए ना हम, देवगति प्लस क्रियाकर्म। मार्गणाओं में जब हम देखते हैं तो उसमें सारे कंडीशन हमको देखने हैं, अकेला अगर यदि ऐसा कहते कि चौथा गुणस्थान और क्रियाकर्म खाली उपशम समय तो, उपशम समय तो घटित नहीं होगा, वेदक समय में किसी के घटित हो सकता है, सम्यक तो मार्गणा में घटित हो सकता है ऐसा, परंतु क्या उपशम समय तो में ऐसा घटित कर सकते, वहाँ उपशम समय तो में अंतर पड़ा ना, पहले था और फिर बाद में अंत में उसने प्राप्त किया। क्षयिक समयत्व में कितना अंतर्घटित होगा? क्षयिक समय तो छूटता ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं है कि वो चौथा गुण स्थान छूटा और वो नीचे के चला गया। देखो मनुष्य ऐसा करना चाहिए, नीचे से तीसरी लाइन इस प्रकार, ये भी हुए अंतरकाल होता है। हाँ, अब ये नीचे से दूसरी लाइन, अर्ची अर्ची मालिनी वज्र कौमा लगाना, वैरोचन के बाद भी कौमा, सोम सोमरुचि अंक स्फटिक आदित्य विजय वैजयंत जयंत फिर कौमा अपराजित, ये किसके नाम है? हाँ, चार अनुत्तर है उसमें, अभी आगे हम पढ़ेंगे। और सर्वार्थ सिद्धि यानी अनुदिश नौ है और अनुत्तर पांच है, अभी सर्वार्थी सिद्धि सकट पांच है। ये विमानों के नाम है, नौ ग्रहवेकों के अपने नाम सुने ना, उसके ऊपर भी एक लेवल पर एक सतह पर नौ विमान होते, एक सेंटर में, चार मुख्य दिशा में, चार विदिशाओं में, उसको कहते हैं अनुदिश विमान। ये पहले जो नौ नाम है वो उनके है, और जो विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि हो उसके भी ऊपर एक लेवल पर पांच विमान है, सेंटर का जो है उसको कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि, वो टॉप मोस्ट कहलाता है, लास्ट स्वर्ग का विमान, और उसके चौहों ओर एक एक है। उन विमानवासी देवों में प्रयोग कर्म का अर्थ योग वाला जीव, समवदान कर्म यानी जो कर्मों का बांध रहा है, आठ है या सात है या छो है, जिसमें कर्मों का विभाजन होता है बंधन की अपेक्षा या सत्ता की अपेक्षा उदय की अपेक्षा, उसको कहते हैं। तो वहाँ तो हमेशा ही रहेगा, योग भी रहेगा और उसके कर्म का बंध भी रहेगा, और क्रिया कर्म का भी अंतरकाल नहीं, ऐसा क्यों कहा मयंक भाई? आप कहेंगे ये अनुदिश और अनुत्तर विमानों में क्रिया कर्म ने सम्यक्त्व का अंतर नहीं होता ऐसा कहा है? हाँ, वहाँ सभी सम्यक दृष्टि है, सम्यक्त्व के साथ ही जन्मते हैं और उनको सदाकाल सम्यक्त्व ही रहता है, वहाँ अन्य कोई गुणस्थान ही नहीं है। वेदक हो सकता है, क्योंकि क्या है, कोई अभी यहाँ द्वितीय उपशम के साथ गया तो उपशम भी हो सकता है, वो अपर्याप्त काल में, वहाँ प्रथम उपशम प्राप्त करने का सवाल ही नहीं है। प्रथम उपशम किसको होगा? जो मिथ्या दृष्टि होगा उसको होगा, तो वहाँ वेदक और क्षायिक और उपशम तीनों में पाए जाएंगे। उपशम केवल अपर्याप्त द्वितीय उपशम वाला, कि जो श्रेणी के या द्वितीय उपशम काल में मरता है उसकी बात है, इसलिए यहाँ क्या है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। नाना जीव ने हमेशा वहाँ जीव तो रहेंगे ही, और जो रहेंगे वो सारे सम्यक दृष्टि रहेंगे, इसलिए वो कोई जीव ही नहीं है, ऐसी बात कभी होगी ही नहीं। दूसरी बात, एक जीव की अपेक्षा ने सम्यक तो है, छूट गया और फिर प्राप्त हुआ, ऐसा भी कभी नहीं बनेगा, इसलिए वहाँ क्रियाकर्म का अंतर नहीं है, गैप नहीं है, वह निरंतर है। निरअंतर, अंतर नहीं होने को निरंतर कहते हैं। अब इंद्रिया मार्गणा, ये मार्गणा ने अपना क्राइटेरिया भी बदल गया है, अभी तक हमने चार गतियों में देखा, अब हम इंद्रियों की अपेक्षा बात करेंगे। इंद्रिय मार्गणा के मूल भेद कितने हैं, याद है ना? पांच है, एकेंद्रिय जीव, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव। अभी एकेंद्रियों में कौन कौन से कर्म होते हैं, ये क्रिया कर्म होगा कि नहीं एकेंद्रियों में? नहीं, एकेंद्रिय से लेकर असंगी तक तो सम्यक तो होता ही नहीं है, तो हम घटित करेंगे अभी जो होता है। तो इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से, अनुवाद यानी कथन की अपेक्षा, एकेंद्रियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? तो कभी अंतर ही नहीं होगा ना, हमेशा वहाँ जीव होंगे ही और हमेशा ही वो कर्मों का बंध करेंगे, उनको भी योग होगा। कौन सा योग होगा एकेंद्रियों में? काय योग होगा, बराबर है। और काय योग के कौन कौन से उसमें भेद होंगे? हाँ, औदारिक होगा और औदारिक मिश्र और कारमान। तेजस नाम का योग नहीं होता है, हाँ, काय योग के साथ वेद देखे ना हमने, शरीर वर्गना की बात कर रहे हैं। तो उनके अंतर नहीं है, निरंतर है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? अधक कर्म किसको कहा था? औदारिक नो कर्म जो वर्गना है, देखो शरीर से छूट गई है, और छूट गई तो कभी कभी क्या होता है, एक समय तक उसी अवस्था में रहते हैं और फार में बाद में वो परमाणुओं का अन्य कुछ परिणमन होता है। कभी कभी क्या होता है, वो तो उसी रूप से पूरे लोकाकाश में फैल के रहती है, औदारिक नौकर्म रूप से ही रह गए, यानी उसका परिणमन जो है औदारिक नौकर्म वर्गना रूप से उसी प्रकार से रहते हैं, और फिर दोबारा वो जीव ग्रहण करेगा उसको। हाँ, तो अभी यहाँ अंतर में कैसे घटित करना है, वो तो काल में गया था। जितने समय तक औदारिक नौकर्म वर्गना रूप से रह गया, शरीर से तो छूट गया परंतु उसकी अवस्था वैसी ही रही, तो उसको हम कहेंगे इतने काल तक वो अधक कर्म है, उस जीव का वो अधक कर्म है, ऐसा कहेंगे। अब यहाँ अंतर की बात है, यानी छूट गए, एक समय में उन परमाणुओं का अन्य रूप परिणमिन हो गया, और दोबारा जब वो जीव ग्रहण करेगा और उसको आहार वर्गना यानी औदारिक वर्गना रूप से परिणमित करेगा, तब हम कहेंगे अंतर समाप्त तो हुआ। तो कम से कम कब होता है, एक ही समय में वापस ग्रहण करेगा, ऐसा भी हो सकता है ना? देखो अभी हम पढ़ेंगे उसको। कोई भी पुद्गल परमाणु हो जाएगा छुट्टे, अन्य वर्गणा किसको कहते हैं, विशिष्ट उन उतनी संख्या में विशिष्ट उसके जो कुछ वहाँ उसके गुणों के साथ जो है उसको हम वर्गणा कहते हैं।
तो दो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, जैसे मैं छूट गया औदारिक में निकला,
हाँ
छूट गया, ठीक है, तो औदारिक के रूप में रहे,
औदारिक के रूप में कितने काल तक, असंख्यात काल तक रहते हैं।
अच्छा।
उसका काल हमने कितना देखा था, असंख्यात लोक क्षेत्र की अपेक्षा उसको बताया था, काल को बताया था, कितना असंख्यात लोक में जितने प्रदेश हो गए उतने समय, ये तो बहुत बड़ा काल है ना, उतने काल तक वो औदारिक नौकर्म वर्गना रूप से ही रहेगा, और फिर वापस ग्रहण करेगा
तो उसका
काल कही, हाँ उसको हम वो गृहित भी कहते ना। तो देखो अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, क्योंकि कोई न किसी जीव के वो तो अधक कर्म रूप से नौकर्म वर्गना रहती होगी, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, यह करो उसको। अब एक जीव की अपेक्षा जब बात करेंगे तो एक जीव एक इंद्रियों में लगातार रहता रहे, तो यहाँ एक बहु की बात नहीं है, एक केंद्रीय में से मरकर फिर एक केंद्रीय, फिर एक केंद्रीय, फिर एक केंद्रीय, कभी बादल होगा, कभी सूक्ष्म होगा, कभी पर्याप्त होगा, कभी अपर्याप्त होगा, कभी पृथ्वी होगा, जल होगा, वायु होगा, जो कुछ है, ऐसा कितने काल तक। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सुना ना, यहाँ भी कल परसों पढ़ा हमने, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, उत्कृष्ट काल तीन समय कम अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। मैंने कहा ना अधक कर्म के बारे में जो हमने कल चर्चा की थी, एक पुद्गल परिवर्तन कब कहते हैं, जब कोई छोड़े हुए परमाणु, देखो किसी जीव ने किसी भव के शुरुआत में अनंत परमाणु ग्रहण किए, एक समय प्रबद्ध प्रमाण, तो वही परमाणु और उन हर एक 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 परमाणु का जो कोई स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन है, जितना स्निग्ध है जितना रुक्ष है उसके भी जो कोई डिग्री है अविभाग प्रतिच्छेदों में, उसका एक भी यहाँ का वहाँ नहीं चलेगा, तो वे ही परमाणु उसी स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ जीव दोबारा ग्रहण करेगा उतनी क्वांटिटी में, तब उसको हम कहेंगे एक पुद्गल परावर्तन उसका समाप्त हुआ। उसके लिए भी अनंत काल लगता है, जिसके अनंतवे भाग में अनंत उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाती है, इतना अनंत काल है वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कल हमने देखा कि वो जघन्य और उत्कृष्ट उसमें दोनों होते हैं। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, देखो उसके लिए और एक सिमिली लेना, जैसे हम देखते हैं ना क्षेत्र परावर्तन में हमने क्या देखा, या स्वक्षेत्र परावर्तन में कोई जीव जघन्य अवगाहना यानी शरीर की अवगाहना के साथ जन्मा, दोबारा जब कभी एक प्रदेश अधिक बड़ा साइज लेके जन्मेगा तो उसको क्रम से लेना, और बीच में कोई अन्य अन्य पर्यावरण कभी मनुष्य हुआ, देव हुआ, नारकी हुआ, वो बड़ी महामत्स्य हुआ, उसको नहीं गिनना, काल को गिनना नहीं, मैं अवगाहना की बात कर रही हूँ। हाँ, तो फिर वो तो कहाँ पड़ा है निगोद, उसी अवगाहना के साथ मान लेते, उसके जितने वेरिएशंस हो गए उतने में ही वो जन्म मरण कर रहा है, उसने कभी बड़ी अवगाहना ही धारण की नहीं, और किसी अन्य कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जीव ने क्रम क्रम से सभी अवगाहना को पार किया, बीच बीच में अक्रम से जितना जन्म लेगा उसका काल तो गिनना परंतु क्रम में उसको नहीं गिनना, तो ये कितनी रेयर पॉसिबिलिटी है और कितना बीच में अनंत काल चला जाएगा। तो कोई जीव ऐसा पूरा करता है तो हम कहेंगे वो स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा हुआ। तो क्या वो निगोद ने स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा किया कि नहीं किया? हाँ, काल उसने उतना बिताया ना, तो काल का नाप है, तो हम कहेंगे उसका इतना एक क्षेत्र परावर्तन पूरा हुआ, क्योंकि उसने कोई अन्य अवगाहना धारण की नहीं है, फिर भी उसने क्षेत्र परावर्तन पूरा किया क्योंकि उसने उतना काल बिताया। नहीं नहीं नहीं, एक जीव की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा तो है ही, नाना जीवों की अपेक्षा वेरिएशन होगा, थोड़ा जगन्य उत्कृष्ट वेरिएशन होगा, परंतु उसका कितना पॉसिबल काल लगता है उसके लिए, मिनिमम पॉसिबल भी कितना है तो उसको हम क्षेत्र परावर्तन कहेंगे ना। वैसे पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं? जब दोबारा वही के वही परमाणु ग्रहण करेंगे। देखो, कर्म परमाणु को ले लो या नो कर्म परमाणु को ले लो, आयु के पहले समय में बांधते हैं, वो तो सभी छूटते नहीं है, हर समय थोड़े थोड़े छूटते हैं, तो हर समय छूटते तो उनकी अन्य अन्य अवस्था भी बदलती रहती है, यानी फिर दोबारा उन्हीं को उसी प्रकार से ग्रहण करना कितनी रेयर पॉसिबिलिटी है, तो उसका तो बहुत लंबा चौड़ा गणित है, फिर भी उसमें अनंत काल लगता है। अब यहाँ ऐसे जीव लिए जो एकेंद्रियों में ही है, उन्होंने जो आयु के ने उसके जो पहले समय में ग्रहण किए थे, दूसरे समय में वो उसने छोड़े, एक समय तक वो औदारिक रूप से रहे, फिर बाद में वो उसका अंतर चालू हो गया। अब वे ही परमाणु दोबारा वो औदारिक रूप से परिणमित होकर वो जीव ग्रहण करेगा, कब? जब एकेंद्रिय की उसकी अंतिम भव होगा तब, ये पॉसिबिलिटी यहाँ बताई। तब तक अन्य जीव ने क्या किया है? असंख्य पुद्गल परावर्तन किए हैं। ये कल हमारा ये अधक कर्म का फिट नहीं हो रहा था ना, इसको इस तरह से लेना। हाँ, रहता है ना जघन्य और उत्कृष्ट, अनंत का अनंत गुना का डिफरेंस है उसमें, ये क्योंकि असंख्यात काल है ना, वो जीव ही तो एकेंद्रीय पर्याय छोड़ने वाला है। अरविंद आप नहीं समझे, वो जीव एकेंद्रीय रूप से कितने काल तक रहेगा, ये उसकी लिमिट है असंख्यात परावर्तन, पुद्गल परावर्तन। हाँ, तो उसके बाद उसके तो अन्य इंद्रियों में वो जन्मने वाला है। हाँ, नहीं किए थे, ऐसे ही तो है ना, उसी को तो अंतर कहेंगे हम, बीच में ग्रहण करते तो उसका अंतर छोटा हो जाता। नहीं नहीं, उसका पुरावर्तन अन्य जीवों की अपेक्षा देखो देखो, पुद्गल परावर्तन ये विशिष्ट काल को बताता है, यदि कोई जीव का ऐसा हो तो कितना काल लगेगा उसकी वो बात है। जैसे हम देखते हैं ना घड़ी की ओर, अभी एक इसको कितने परिवर्तन करने पड़ते हैं, वो सेकंड कांटे को कितने परिवर्तन करता है, 12 to 12 आने में, 60 सेकंड में एक उसका परिवर्तन होता है, और मिनट को 12 से 12 तक आने के लिए परिवर्तन करने के लिए कितना काल लगता है, 60 मिनट, एक घंटा लगता है उसको, और अवर जो है उसके लिए 12 से 12 तक आने के लिए कितना, 12 घंटे लगते हैं। तो जब ये 12 घंटों में एक परिवर्तन पूरा करता है तो सेकंड कार्ट जो है तो वो कितना करता है, ख्याल है ना, एक घंटे में 3600 हो जाएगा, 12 घंटे में और उसको 12 से गुना करो, इस तरह से। अभी यहाँ कोई जीव एक इंद्रिय लिया ना, उसने जो परमाणु छोड़े थे वो अन्य रूप से परिवर्तित हो गए। अब दोबारा वो उसी रूप से परिणमित होकर वो ग्रहण करेगा आहार वर्गणा रूप से, तो उसके लिए इतना काल बताया, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। उसके अंतिम एक केंद्रीय भाव के अंतिम समय में वो ग्रहण करेगा, ऐसा लिया यहाँ पर। देखो फिर पढ़ते इसको, उत्कृष्ट अंतरकाल, चौथी लाइन, तीन समय कम अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये एकेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल है उस जीव का। वो लगातार मरकर फिर एकेंद्रिय में, फिर एकेंद्रिय में, फिर एकेंद्रिय में। देखो हम कहते हैं ना जीवों को, मनुष्यों को, अरे स्वाध्याय नहीं करेगा और ये तो त्रस पर्याय समाप्त होने को आई होगी, तो एकेंद्रियों में जाएगा तू तो कितने काल भटकेगा इसका कोई हिसाब नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं, ये प्रमाण है, ये उत्कृष्ट है। यानी अधिक से अधिक रहेगा तो कितना अनंत काल है। एक पुद्गल परावर्तन का काल भी अगर हम देखेंगे तो कितना अनंत है। ये तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन एक केंद्रियों में भटकेगा जी। और हमें अभी ये क्या पड़ी है ना आयु, अभी तो ये तो बुढ़ापे में करने का काम है, अभी क्यों करें, ऐसा लगता है ना हमें कि आप तो स्वाध्याय में जाते हो रोज, क्या कोई इतना टाइम बिगाड़ने का। चार घंटा कुछ काम करेंगे, मोल मजूरी करेंगे, दुनियादारी करेंगे तो कुछ मिलेगा। पैसा मिलेगा। देखो परावर्तन की बात, परिवर्तन कहो या परावर्तन की, वो जो सुनते हैं ना तो भय से कांप उठता है जी। वो तो क्योंकि इसी को संसार कहा, पांच प्रकार का संसार कहा है इसको। ये पांच प्रकार के ना, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। भाव वाला तो आपको समझना बहुत कठिन है। तो इसके क्रम से होने चाहिए, उसमें बीच में बहुत बड़ा काल चला जाता है।
सबसे अधिक तो भाव परिवर्तन
किए, भाव परावर्तन नहीं, नहीं सबसे अधिक परावर्तन हमने द्रव्य के किए, भाव का काल बहुत ज्यादा है। देखो देखो अभी एक दिन में वो घंटे वाला काटा, वो उसकी सुई ज्यादा घूमी क्या सेकंड वाली घूमी, हाँ, तो परिवर्तन किसके ज्यादा हुए, द्रव्य परिवर्तन ज्यादा हुए और भाव परिवर्तन कम हुए। परंतु भाव एक एक भाव परिवर्तन के काल में अनंत अनंत, उल्टा ले लो अभी, एक भाव परिवर्तन में अनंत भाव परिवर्तन होते हैं, एक भाव परिवर्तन में अनंत काल परिवर्तन होते हैं, एक काल परिवर्तन में अनंत क्षेत्र परिवर्तन होते हैं और एक क्षेत्र परिवर्तन के काल में अनंत द्रव्य परिवर्तन होते हैं और एक द्रव्य परिवर्तन भी अनंत 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 काल है। तो क्योंकि हमने अनादि से काल बिताया है, किस रूप से बिताया उसको काउंट तो करें ना, फिर भी अनादि से आज तक इस जीव ने भाव परिवर्तन अनंत किए हैं। अभी भाव के अनंत किए तो बाकी सब अनंत अनंत आ गए ना उसमें। संख्या के हिसाब से, संख्या के हिसाब से एक एक ले लो तो उसका काल कितना अनंत है, सबसे ज्यादा बड़ा है। आप उल्टा ले रहे उसको, देखो देखो अभी वो सेकंड, इसके आवर ग्लास के साथ आप उसको सेकंड, हाँ सेकंड का जो है वो द्रव्य परावर्तन ले लो, हाँ, और वो अमर वाला है वो भाव ले लो। अभी लास्ट वाला लेते और पहले वाला लेते, वही तो बात है, कम किए, संख्या कम किए, वो घूमा कम बार, परंतु काल कितना लगा उसको, ख्याल है ना। तो पहला द्रव्य परावर्तन का पूरा परिवर्तन पूरा करने का काल छोटा अनंत है और भाव परावर्तन एक पूरा करने का काल बहुत 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 बड़ा है। उसमें क्रम से सारे भाव होने चाहिए, बीच बीच में अन्य भाव होते हैं तो उसको गिनना नहीं, परंतु काल को गिनना। जैसे क्रोध की कोई विशिष्ट डिग्री हुई, दूसरे समय में भी वो उससे एक डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, पर उतने खाली क्रोध की वगैरह बात नहीं हुआ, उसमें तो बहुत सारे है। स्थिति कितनी बनती है एक एक समय के लिए, कारणभूत परिणाम जो संकलेश और विशुद्धि के, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है, और फिर उसके कारणभूत अनुभाग बंध के प्रमाण वो असंख्यात है, लोक प्रमाण असंख्यात, और उसके कारणभूत योग के परिणाम वो असंख्यात है। अभी हर एक का पहले पहले जघन्य ले लो, ये वो सारा हमने प्रमाद के भेद देखे थे ना 37,000, वैसे ये एक एक में असंख्यात है। और फिर उसके टर्न बाय टर्न कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हर एक का लगाओ और क्रम से उसको लगाओ। पहले नंबर वाला कौन सा, सबका जघन्य ले लो। दूसरे नंबर वाला, ऊपर के तीन को जघन्य रखो और नीचे वाला योग वाला दूसरे सेकंड पर ले लो। ऐसे असंख्यात लो, ये उसके जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण तो योग स्थान हो गए। जब सारे पलट के फिर जघन्य पर लाना, फिर दूसरे वाला जो कॉलम है अनुभाग बंधन देवसाय स्थान वाला, वो जघन्य से दूसरे स्थान पर ले जाओ। दूसरे स्थान में ये सारे योग स्थान फिर लगाओ, फिर तीसरे स्थान पर योग स्थान। ऐसे हर एक एक कॉलम चेंज करते रहना, ये तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना वो बड़ा है। कहीं भी जा सकते हैं। देखो जिस परिवर्तन की बात की है, तो वहां तो जब द्रव्य परिवर्तन कहता है तो कौन से पुद्गल परमाणु, कर्म ले लो या नो कर्म ले लो, कर्म में भी घटित कर सकते हैं। कर्म रूप से जो हमने पुद्गल परमाणु लिए है वे ही उतने ही नंबर में उसी क्वालिटी वाले चाहिए, स्पर्श रस गंध वर्ण उसी क्वालिटी के चाहिए। जब दोबारा ग्रहण करेगा, क्योंकि एक बार ग्रहण किया हुआ छोड़ेगा कब, वो तो कितने ही भवन तक चलते ना, सागरों के कर्म बांधता है, तो जीव की सत्ता में पड़े रहते। जैसे मिथ्यात्व वाला कोई कर्म बांधा 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहा, तो अंतिम लॉट उसका 70 कोड़ा कोड़ी के समय में चला गया, परंतु बाय दैट टाइम पहले वाले तो अन्य किसी जीव ने ग्रहण किए ना कर्म रूप से, वो कहाँ खाली पड़े हैं आपके लिए, वो इंतजार में नहीं बैठे हैं कि चलो अब मुझे कब ग्रहण कर रहे हैं।
आपका प्रश्न ऐसा है कि जब हम द्रव्य परावर्तन की बात देख रहे, पुद्गल परावर्तन की बात, जब वो कौन से क्षेत्र में जन्मा, कितने काल तक वो वहाँ रहा, कौन से परिणाम किए, ये कुछ कंसिडर नहीं करना है। खाली हमने जो पहले शुरुआत में जो हमने पुद्गल परमाणु जो ग्रहण किए थे, वो दोबारा कब प्राप्त होंगे,
यानी वो बीच में लिए नहीं थे, ऐसी बात नहीं है।
अभी देखो क्षेत्र परावर्तन को जब हम देखते हैं, तो क्षेत्र परावर्तन में जन्म करते वक्त कितनी अवगाहना से जन्मा और कौन से एक एक एडजेसेंट प्रदेशों को ग्रहण किया, उसको देखना है। अभी तुम सर्वार सिद्धि में जाके सातवें नरक में जाके 33 सागर बैठे, ये वगैरह जो बातें हैं उसको तो कोई मायना नहीं रखता है। खाली क्षेत्र को हमको देखना है, कौन से पुद्गल परमाणु ग्रहण किए, वो नहीं, कब जन्मा कब मरा ये वो कुछ देखने का ही नहीं, बाकी सब आंखें बंद कर देना, सिर्फ हम क्षेत्र को देखें। वैसे यहाँ द्रव्य परावर्तन में कौन से पुद्गल परमाणु ग्रहण किए हैं और वो कब प्राप्त होंगे, बस, बाकी अन्य कोई बात नहीं लेनी है। जैसे हम काल परावर्तन में देखते हैं तो पहले समय में जन्मना चाहिए, फिर दूसरे समय में जन्मना चाहिए, वो
दूसरा चांस आने के लिए एक कल्पकाल बिताना पड़ेगा,
तो वहाँ तो सिर्फ काल ही देखना है, वहाँ तो सिर्फ काल ही देखना है, कौन से क्षेत्र में जन्मा है, किधर जन्मा है, वो हमें कुछ नहीं लेना देना है। इस तरह से आप ध्यान में देंगे तो बाकी बातें दिमाग में नहीं आएगी।
ये अभी अनुवाद चल रहा है ना, 2 पेजेस तो विशेषार्थ लिखा परिवर्तन का दोनों सेम काल है। हाँ, क्योंकि कर्म के वो चांस तभी बनेगा ना कि जब अनंत काल बीत जाएगा। आपका कहना है वही परमाणु आने चाहिए, ऐसा ही उसका रूल है। नो कर्म परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन दोनों का समय काल एक ही है, दोनों को ही मिलकर पुद्गल, हाँ वे ही आने चाहिए, वही इतनी रेयर पॉसिबिलिटी।
देखो हम अभी इस तरह से देख सकते हैं, अभी मान लीजिए कि हम अभी से शुरू करें, तो अभी जो मुझे शरीर है, वो शरीर के जो परमाणु मुझे ग्रहण हुए, तो मैंने विशिष्ट भाव किए, विशिष्ट नाम कर्म बांधा, जभी तो ये कुछ जो कुछ मिला है,
उसमें तो सभी कर्म लेना, 8 कर्म लेना।
हाँ,
वही तो पॉसिबिलिटी नहीं ना। फिर देखो बीच में उसने ग्रहण भी किए हैं, परंतु उसको काउंट नहीं किया था हमने।
नहीं, उनका कहना है कि नो कर्म और द्रव्य कर्म जो है, यानी
उसका हिसाब जरा अलग लगता है हमें,
नहीं,
परंतु काल की अपेक्षा देखेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नो कर्म पद्गल परावर्तन के लिए जितना काल लगता है उतना ही काल इसको लगता है, दोनों को ही द्रव्य परावर्तन कहने में आता है। आगे बढ़ेंगे अभी, नहीं तो अपना परिवर्तन पूरा हो जाएगा, 10 बज जाएंगे। देखो बादर एक इंद्रियों में, पहले तो एक इंद्रिय इन जनरल बात की, उसमें बादर सूक्ष्म सब कुछ ले लिए थे। अब बादर एक इंद्रियों के अलग से अगर बताना है तो उसका काल अलग है। तो बादर एक इंद्रियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतर काल कितना है, इसमें तो अंतर नहीं होता कि जीव हमेशा ही वो कर्म का ग्रहण करते रहते हैं। नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, तो नाना जीव यानी अनेक जीव हमेशा ही उस पर्याय में रहेंगे और हमेशा ही वो अधक कर्म उनका निकलते रहेगा, अंतरकाल नहीं अनिरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, यानी एक समय के लिए छोड़े, एक समय उसने अन्य पर्याय धारण की परमाणु होने हो और फिर दोबारा वो शरीर रूप से ग्रहण किए, तो अंतर एक समय का हुआ गैप। और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। ये तो क्षेत्र में हमने काल बता दिया, अंगुल का असंख्यात वा भाग जितना क्षेत्र है उसमें जितने प्रदेश है उतने समय, यदि हमको अवसर्पिणी में गिनना है तो उतने ही काल, कितना है काल, तो असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। एक अवसर्पिणी होती है 10 कोड़ाकोड़ी सागर और उत्सर्पिणी होगी 10 कोड़ाकोड़ी, मिलकर 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। पर ऐसे कितने कल्पकाल जाने पड़ेंगे, असंख्यात। ये बादर एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल है। तो उस काल को यहाँ अधक कर्म का अंतर बताया। देखो ये सुनने में इतना डिफिकल्ट लगता है और हम इतना करके आए कितनी बार, अनंत बार, क्योंकि अभी हम है तो हम है तो अनादि से है, तो कहाँ जाके आए, कहाँ काल बिताया है। मनुष्यों में तो कितने रह सकते देखे हमने, ये तो यहाँ तो बड़ी बड़ी आयु लेके थे, अभी हमने देखे पूर्व कोड़ी वाले, हम तो अभी 100 साल भी नहीं जियेंगे, क्यों इतनी भी आयु नहीं रही ना अभी, तो बताने के लिए तो हमने बड़ी आयु लेकर मनुष्य पर्याय देखी थी, और लगातार मिले तो भी कितनी मिलेगी, और हर मनुष्य पर्याय में इसी तरह से लाए और टाइम गवा देंगे तो क्या उसका फायदा है। मनुष्य हुए न हुए बराबर है, किसी भी पर्याय में क्यों न चले जाए। जो संगी पंचेंद्रिय जीव है अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें स्थिरता करे तो ही काम आने वाली बात है। ये सब में से पांचों प्रकार का जो संसार बताया ना, ये संसार परिवर्तन वाला, ये परिवर्तन करने को ही संसार कहा है। तो इसमें से छूटने का एक ही मार्ग है, समय दर्शन प्राप्त करके आगे चले जाओ। देखो अभी ये बादर एक इंद्रियों की बात है ना, अभी बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों की बात करेंगे। पहले पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिलकर काल कितना है, तो अभी हमने देखा था असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है और एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, यानी वापस उसने ग्रहण किया। और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम संख्यात 1000 वर्ष है। स के ऊपर बिंदी लगाना। बादर एक इंद्रियों में कोई लगातार जीव जन्म मरण करता रहेगा तो संख्यात 1000 वर्ष तक रहता है। और बादर एक इंद्रिय अपर्याप्तकों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है। और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त है। देखो इसका अर्थ क्या है, कोई जीव लगातार बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त 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 रहे, जन्म मरण करता रहे, तो कितने बार कितने काल तक करेगा, एक अंतर्मूर्त। और बादर पर्याप्तकों में लगातार करता रहेगा तो संख्यात 1000 वर्ष, परंतु कभी पर्याप्त 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 करता रहे तो असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। और ये तो ये असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कहा, वहां सूक्ष्म एक इंद्रियों की बात करेगी, वो तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त रहता है। और फिर बादर सूक्ष्म करता रहे तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, इतना काल उसका। ये सूक्ष्म की बात कर लेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो डो ऋषि सर